السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول جڑوں کی تلاش. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کنور خلیل, پیشکش محمد اظہر. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600. مصنف ابن صفی بی اے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. پیش رس عمران کا ناول جڑوں کی تلاش تاخیر سے پیش کیا جا رہا ہے. جاسوسی دنیا کا ناول چاندنی کا دھواں میری علالت کی بنا پر دیر سے شائع ہوا تھا, اس لیے عمران کے ناول پر بھی اثر پڑنا لازمی تھا. عمران کی پچھلی کہانی آتش دان کا بت آپ نے پڑھی تھی. وہ کہانی دراصل جڑوں کی تلاش میں مکمل ہوئی ہے. عمران آپ کو پوری کہانی پر چھایا ہوا نظر آئے گا, لیکن آپ اسے کم ہی دیکھ سکیں گے, اور آخر میں جب راز کھلے گا تو آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ تو قدم قدم پر سامنے آیا ہے. اگر اس نے اس کہانی میں بہت زیادہ ہنسایا نہ ہو تو اس بیچارے کو معاف ہی کر دیجئے گا, کیونکہ وہ مجبور تھا. اس قسم کی تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ کہانی کا پلاٹ کس قسم کا ہے اور اسے کس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کہانی میں ناممکن تھا کہ وہ بار بار آپ کے سامنے آ کر اپنی حماقتوں سے آپ کو محفوظ کرتا. بہرحال جتنا بھی آیا ہے خواب آیا ہے, آپ کہہ کے لگائیں بغیر نہ رہ سکیں گے. ابن صفی 4 نومبر 1758. ڈھمپ اینڈ کوکا دفتر بڑے مزے میں چل رہا تھا, مگر اس کی مینیجری کم از کم خاور کے بس کا روک نہیں تھی, کیونکہ بزنس کے چکروں کے لیے اس کا ذہن موضوع نہیں تھا. ذہن موضوع رہا ہو یا نہ رہا ہو, لیکن صورت تو ضرور ایسی تھی کہ وہ کسی فرم کا مینیجر معلوم ہو سکتا تھا. بھاری بھرکم بارک چہرے والا, کیونکہ وہ بزنس کے معاملے میں اناڑی تھا, اس لیے اس کے کمرے میں لکڑی کی ایک دیوار سے پارٹیشنز کر دیے گئے تھے. ایک طرف جولیا نہ بیٹھی ٹائپ رائٹر کھٹکھٹایا کرتی تھی, اور دوسری طرف خاور اپنے مینیجری سمیت بڑا جوان رہا کرتا تھا. اگر کبھی کوئی نیا گاہک آ جاتا اور خاور کو اسے ڈیل کرنے میں کچھ دشواری محسوس ہوتی تو جولیا کاغذات کا پرندہ دبائے دستخط کرانے کے بہانے اس کی میز پر آ جاتی, اور دوران گفتگو میں دخل اندازی کر کے خاور کو سہارا دیے رہتی. آج بھی کوئی بڑا گاہک خاور کی میز پر موجود تھا اور اپنے کام کے سلسلے میں بعض امور کی وضاحت چاہتا تھا. جولیا نے محسوس کیا کہ خاور کر گفتگو کر رہا ہے, اور گاہک کے ٹوکنے پر بعض اوقات گڑبڑا بھی جاتا ہے. وہ کچھ کاغذات سنبھالے ہوئے خاور کی میز پر جا پہنچی. او ہو, اچھا ہوا تم آ گئی, خاور نے کہا, اور پھر گاہک سے بولا, یہ میری اسسٹنٹ ہے سر سوکھے, میرا دائنا ہاتھ. اب دیکھیے, آپ جو کچھ چاہتے اس کام کا تعلق زیادہ تر انہی کے ذات سے ہوگا, حسابات وغیرہ کی پڑتال یہی کرتی ہیں. جولیا سے اس گول مٹول آدمی پر ایک اچکتی سی نظر ڈالی. یہ کبھی وجیہ ضرور رہا ہوگا, مگر اب موٹاپے نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا اظہار الفاظ میں ناممکن ہے. بس دیکھنے اور محسوس کرنے کی چیز تھی, قد تو متوسط ہی تھا, مگر پھیلاؤ نے اس توسط کی ریڑھ مار کر رکھ دی تھی, اور اب اسے گول ہی کہا جا سکتا تھا. چن یا صاف تھی, صرف کناروں پر تھوڑے سے سیاہ بال تھے جو اگر سفید ہوتے تو اتنے بڑے نہ معلوم ہوتے. اس کے پیروں کے پاس ہی ایک ننا منا سا خوبصورت کتا بیٹھا سرخ زبان نکالے ہانف رہا تھا. جولیا نے اسے تعریفی نظر سے دیکھا. اس کے بال بڑے اور سفید تھے, کان البتہ گہرے کتھئی تھے, اور یہی اس کا حسن تھا. سر سوکھے رام اور مس جولیا نہ فنٹر واٹر یا خاور نے تعارف کرایا. سر سکھے رام نے مسکرا کر سر کو خفیف سی جنبش دی. और जूलिया ने हाथ मिलते हुए कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ जनाब। वो दिल ही दिल में हंस रही थी, इतने उर्दू तो समझती ही थी कि इसके नाम और जस्सा के तजाज से लुफ्त अंदोज हो सकती। कितनी सितम जरेसी थी, ये हाथी सा आदमी सूखे राम कहलाता था। यही नहीं बल्कि खताब याफ्ता भी था। वो सोच रही थी, ना हुआ इमरान वरना मजा आ जाता। देखिए बात दरअसल ये है कि मैं मुस्तकिल तौर पर आप लोगों से मामला करना चाहता हूँ, सूखे राम ने कहा। हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। वो तो ठीक है, सर सूखे ने कुर्सी की पुल से टिकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर आपको इस सिलसिले में थोड़ी सी दस सरी भी मोल लेनी पड़ेगी। देखिए बात दरअसल ये है। वो सांस लेने के लिए रुक गया और जूलिया झुक कर इसके कुत्ते का सर सहलाती हुई बोली, बड़ा प्यारा कुत्ता है। सर सूखे ने इस तरह चौंक कर कुत्ते की तरफ देखा जिसे इसकी मौजूदगी का ख्याल ही ना रहा हो। आपको पसंद है, इसने मुस्कुराकर पूछा। बहुत ज्यादा, तो मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। ओ अरे नहीं, जूलिया खामखवा हंस पड़ी। नहीं, अब मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, सर सुखी ने कहा और कुत्ते से बोला, लकी ये देखो अब ये तुम्हारी मालका है। वो दम हिलाने लगा और सर सूखे ने फिर अपने बिजनेस की बात शुरू कर दी। किस्सा दरअसल ये है कि, और ठहरिए मैं पहले अपना पूरा तारुफ तो करा दूं। मेरी फिल्म का नाम सूखे एंटरप्राइजेस है। ओ अच्छा, मैं समझ गई, आप जानती हैं, वो खुश होकर बोला। खैर तो मेरा पारोल्डिंग और क्लियरिंग का अलग से स्टाफ था, लेकिन अब इस पर गैर जरूरी मसारिफ भी होने लगे थे। मैंने हिसाब लगाया तो अंदाजा हुआ कि अगर ये काम किसी दूसरी फर्म के सुपर्द कर दिया जाए तो निस्बतन सस्ते में होगा। जी हाँ, अमूमन यही होता है, जूलिया सर हिलाकर बोली। बस तो फिर मैंने अपने यहाँ सेक्शन तोड़ दिया है, सूखे ने कहा, और अब इसके लिए आपकी फर्म से मामला तय करना चाहता हूँ। गालिबन मैनेजर साहब आपको यहाँ के कवायद और जवाबित से आगाह कर चुके हैं। जी हाँ, और मैं इनसे कली तौर पर मुतफिक हूँ, सर सुखे ने कहा। कवायद और जवाबित की बात नहीं थी, मैं तो दरअसल आपके लिए थोड़ी सी दस सिरी बढ़ाना चाहता हूँ। फरमाइए, आपको एक ऐसा हिसाब भी तैयार करना होगा जिससे ये जाहिर हो कि ये काम मेरी ही फिल्म के एक्सटेंशन सेक्शन ने किया है। खावर ने जूलिया की तरफ देखा और जूलिया जल्दी से बोली, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आपको ज्यादा तशवीश हो, ऐसा भी हो जाएगा। बस तभी ठीक है, क्या आप किसी वक्त मेरे दफ्तर आने की सहमत गवारा कर सकते हैं? जब आप फरमाइए। नहीं भाई, जब आपको फुर्सत मिले, बस आने से पहले फोन कर दीजिएगा। बेहतर है, मैं आकर देख लूंगी कि अब तक आपके यहाँ हिसाबात किस तरह रखे जाते रहते हैं। ओ शुक्रिया, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसके लिए आप जो भी हक अलमेहनत तजवीज करें, मुझे इस पर एतराज ना होगा। हक अलमेहनत कैसा? जूलिया ने हैरत से कहा। ये तो मैं अपनी फिल्म के इंटरेस्ट में करूंगी। हमारे लिए यही क्या कम है कि हमें इतना बड़ा और मुस्तकिल काम मिल रहा है। यही बात सर सूखे ने मेज पर इस तरह घूंसा मार कर कहा कि इसका सारा जिस्म थिमला थल थला गया। यही बात, यही स्पिरिट काम करने वालों में होनी चाहिए। फिर खावर से बोला, आप खुशकिस्मत हैं जनाब कि इतने अच्छे साथी आपके हिस्से में आए हैं। शुक्रिया, खावन ने लगार कर डब्बा इसे पेश किया। बस जनाब अब इजाजत दीजिए, वो उठता हुआ बोला। फिर जूलिया से कहा, मैं आपका मुंतजर रहूंगा। साथ ही दुम हिलाते हुए कुत्ते से बोला, नहीं लगी तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम्हारी मालिका वो है। कुत्ता जूलिया की तरफ मुड़ा और वो मुतहिर रह गई, क्योंकि अब वो इसकी कुर्सी पर दोनों अगले पंजे टेक कर खड़ा हो गया था। और उसकी रान से अपनी थोतनी रगड़ रहा था। इसने फिर इसके सर पर हाथ फेरा और इसकी नन्ही सी दुम बड़ी तेजी से हिलने लगी। कमाल है, जूलिया खावर ने बेकवक कहा, कुत्तों को ट्रेन करना मेरी हॉबी है। सूखे मुस्कुराया, मेरे सारे कुत्ते बड़े समझदार हैं। अब ये मेरे साथ वापस जाने की कोशिश नहीं करेगा और सिर्फ आप ही के साथ जाएगा। आपके दफ्तर का कोई दूसरा आदमी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। अच्छा, बस इजाजत दीजिए। वो इन दोनों से मुसाफा करके रुखसत हो गया। इसकी चाल भी अजीब थी, बस ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई गेंडा उछलता कूदता हुआ चल पड़ा हो। क्या ख्याल है? इसके चले जाने के बाद खावर ने जूलिया की तरफ देखा। हैरत अंगेज हर एतबार से हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि शहर में ऐसे ऐसे अजूबे मौजूद हैं, लेकिन हमें इनके दीदार नहीं होते। तुमने इसकी चाल पर गौर किया? हाँ, वही तो मेरे लिए हैरत अंगेज थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मोटा आदमी इतनी तेज रफ्तार से चल सकेगा। इसकी आंखें कितनी चमकीली हैं, खावर ने कहा। और ये कुत्ता? जूलिया ने कुत्ते की तरफ देखकर कहा, जो अब इसके पैरों के करीब बैठा जबान निकाले हांफ रहा था। बाद इसने फ्लैट की शक्ल नहीं देखी थी। इमरान की ताकीद थी कि वो इधर का रुख भी ना करे। इस तरह सुलेमान या ये फैसला करने के काबिल हो सका था कि वो बदस्तूर इमरान ही की खिदमत करता रहेगा। राना पैलेस में सभी थे, नौकर चाकर ड्राइवर जोसेफ हत्ता के ब्लैक जेरो भी बूढ़े आदमी के मेकअप में, लेकिन राना तहवार अली संदूकी का कहीं पता ना था। ब्लैक जीरो बूढ़े ताहिर साहब के रूप में राना तहवार अली संदूकी का मैनेजर था। समझा जाता था कि वो इसकी जायदाद की देखभाल करता है। जोसेफ हर वक्त फौजी वर्दी में रहता था और इसके दोनों पहलू से रिवॉल्वर लटक के रहते थे। इसका ख्याल था कि फौजी वर्दी में इसकी मार्शल स्पिरिट हर वक्त बेदार रहती है और शराब न होने पर स्पिरिट ही में पानी मिलाकर पीने से भी नहीं मरती। जोसेफ बड़ा नोश था, लेकिन इसे मोइना मुकदार से ज्यादा शराब नहीं मिलती थी, इसलिए वो अक्सर स्पिरिट में पानी मिलाकर पिया करता था। इस वो स्पिरिट सह नशे की झोंक में पोच में अटेंशन था, बिल्कुल किसी बुत की तरह बेहसो हरकत, पलके जरूर झपकती रहती थी, मगर बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे किसी उल्लू को पकड़कर धूप में बिठा दिया गया हो। और वो खामोशी से मुजस्सिम एहतजाज बनकर तन व तकदीर हो गया हो। दफातन एक आदमी पुष्ट पर एक बहुत बड़ा थैला लादे हुए फाटक में दाखिल हुआ, लेकिन जोसेफ की पोजीशन में कोई फर्क न आया, बल्कि वो तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मगर जैसे ही वो पोच के करीब आया, अचानक जोसेफ दहाड़ा हार्ट और वो आदमी भड़क कर दो चार कदम के फासले पर थैले समेत ढेर हो गया। गट अप, जोसेफ अपनी जगह से हिले बगैर फिर दहाड़ा। अरे मार डाला, वो मखलूक अलहाल आदमी दोनों हाथों से सर थाम कर कराहा कि डर जाता, जोसेफ गुर्राया। ढेर जाता, राना साहब के पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं मेरे पास। क्या भागता, जोसेफ फिर गुर्राया। आओ आ जाओ, पास आ जाऊं, वो आदमी खौफजदा अंदाज में हाथ हिला हिला कर पूछता रहा। अब जोसेफ खुद ही अपनी जगह से हिला और वो आदमी थैला समेटता हुआ पीछे फुदक गया। ये दुबला पतला और चमेर जिस्म वाला एक बूढ़ा आदमी था। आंखें अंदर को धसी हुई और धुंधली थी, लेकिन हाथ पांव में खासी तेजी मालूम होती थी। क्या बागता, जोसेफ इसके सर पर पहुंच कर धाड़ा। शश शश शकाकल मिस्री, वो थैले से कोई चीज निकाल के से दिखाता हुआ पीछे खिसका। यूं क्या हाय, जोसेफ गुर्राया। अजीब, बस क्या बताऊं, वो बहुत तेजी से बोल रहा था। रल रल रल, राना साहब कदर करेंगे, राना साहब नाय हाय भाग जाओ तो आप ही लड़ाई कीजिए साहब, मजा आ जाएगा। जड़ी बूटियां, हा हा, राना साहब कहाँ हैं? अम नाए जयान ता जियाओ। इतने में ब्लैक जीरो शोर सुनकर बाहर आ गया। क्या बात है, इसने जोजेफ से अंग्रेजी में पूछा। बॉस को पूछता है, मैं कहता हूँ बॉस नहीं है, वो मुझे कोई चीज दिखाता है। ब्लैक जीरो ने बूढ़े की तरफ देखा, वो झुक झुक कर इसे सलाम कर रहा था। हुजूर 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 आला सरकार, जड़ी बूटियां हैं, मेरे पास बड़ी दूर से राणा साहब का नाम सुनकर आया हूँ। ब्लैक जीरो ने जल्दी में कुछ सोचा और आस्ते से बोला, हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। जो कुछ कहिए हाजिर करूं सरकार। हम क्या कहें, हमने तुम्हें कब बुलाया था। सरकार हुजूर, राणा साहब बड़े मार के बूटियां हैं, बस तबीयत खुश हो जाएगी। क्या हमारे किसी दोस्त ने तुम्हें भेजा है। जी हाँ, हमने सरकार की बड़ी तारीफ सुनी है। खैर अंदर चलकर हमें कुछ बूटियां दिखाओ और इनके खवास बताओ। बूढ़ा खुश नजर आने लगा। इसने थैला समेट कर कंधे पर रखा और ब्लैक जीरो के पीछे चलने लगा। जोसेफ खड़ा अहमकान अंदाज में पलके झपकाता रहा। फिर यके बेक वो चौंक कर इस बूढ़े आदमी के पीछे झपटा। ब्लैक जीरो और बूढ़ा अंदर दाखिल हो चुके थे। ब्लैक जीरो इसे एक कमरे में बिठाने का इरादा कर ही रहा था कि इसने जोसेफ को इस पर झटपते हुए देखा। अरे अरे हुजूर, बूढ़ा बौखला गया। ब्लैक जीरो भी भौंचका रह गया, लेकिन बूढ़ा दूसरे ही लम्हे में जमीन पर था और जोसेफ ने इसकी मेली और साल खोरता पतलून की जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया था। बूढ़े इस अचानक हमले से बुरी तरह बौखला गया था, इसलिए जोसेफ की गिरफ्त से आजाद होने के बाद भी इसी तरह बेहस हरकत पड़ा रहा। अलबत्ता इसकी आंखें खुली हुई थीं और वो पलके भी झपक रहा था। क्यों, तुम कौन हो, ब्लैक जीरो आंखें निकाल कर बोला। मम, मैं नहीं जानता साहब कि ये खतरनाक चीज मेरी जेब में किसने डाली थी, वो हांफता हुआ बोला। बकवास मत करो, ब्लैक जीरो गुर्राया, तुम कौन हो। जी मैं जड़ी बूटियां तलाश करके बेचता हूँ, शौकीन राइस मेरी कदर करते हैं, मगर तुम पहले तो कभी यहाँ नहीं आए, ब्लैक जीरो से घूरता हुआ बोला। जी बेशक, मैं पहले कभी नहीं आया। क्यों नहीं आए थे, ब्लैक जीरो ने गुस्से लहजे में कहा। इसके जहन में इस वक्त इमरान लेने लगा था और इसने सवाल बिल्कुल इसी के से अंदाज में किया था। जज जी क्या बताऊं, मुझे इस सरकार का पता नहीं मालूम था, वो तो अभी अभी एक साहब ने सड़क ही पर बताया था कि इस महल में जाओ, यहाँ राणा साहब रहते हैं, बहुत बड़ी सरकार है, इस पिस्तौल की बात करो। सच साहब, मैं नहीं जानता, भला मेरे पास पिस्तौल का क्या काम, पता नहीं किसने क्यों ये हरकत की है, मैं कुछ नहीं जानता। खुदा के लिए इनका ले साहब को यहाँ से हटा दीजिए, वरना मेरा दम निकल जाएगा, जोजे इसे खौंखार नजर से घूरता हुआ बड़बड़ा रहा था। मिस्टर टायर ये क्या कह रहे हैं, मुझे भी बताइए। इसको गर्दन से पकड़कर टांग लो, ब्लैक जीरो ने कहा। जोसेफ पिस्तौल को बाएं हाथ में संभाल कर इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक ऐसा मालूम हुआ जैसे आंखों के सामने बिजली सी चमक गई हो। बूढ़ा चिकने फर्श पर फिसलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। खबरदार फायर ना करना जोसेफ, ब्लैक जीरो चीखा। जोसेफ ने बड़े बूढ़े पर छलांग लगाई थी और अब फर्श से उठ रहा था, क्योंकि बूढ़ा तो छलावा वो था छलावा। जब तक जॉर्जे उठता वो बैरूनी बरामदे में था। फायर मत करना, ब्लैक जीरो फिर चीखा। साथ ही अब वो भी तेजी दिखाने पर आमादा हो गया था। जोसेफ को फलांगता हुआ वो भी बैरूनी बरामदे में आया। यहाँ वो मुलाजिम खड़े चीख रहे थे, साहब वो छत पर है, दोनों ने बेकवक कहा। ब्लैक जीरो चकरा गया, भला ये कैसे मुमकिन था कि उतनी जल्दी छत पर भी पहुंच जाता। नौकरों ने कसमें खाकर यकीन दिलाया कि उन्होंने इसे बंदों की सी फुर्ती से ऊपर जाते देखा है। उन्होंने गंदे पानी के एक मोटे पाइप की तरह इशारा किया था जिससे मिली हुई पोर्च का की कांच थी और पोर्च की छत बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। कोई भी फुर्तीला आदमी कम से कम पोर्च की छत तक तो इतने वक्त में पहुंच ही सकता था। फिर जरा ही सी देर में पूरी इमारत छान मारी गई, लेकिन इसका कहीं पता न था। अंदर पहुंचकर ब्लैक जीरो ने महसूस किया कि इस छलावे ने अपना थैला जी नहीं छोड़ा था। टायर साहब, जोसेफ ने गुस्सेली आवाज में कहा, मुझे फायर करने से जड़ों की तलाश क्यों मना किया था? बास का हुक्म है कि इस महल में कभी गोली ना चलाई जाए, चाहे कोई यहाँ आकर जोसेफ दी फाइटर के मुंह पर थूक दे। खामोश रहो, बॉस के हुक्म पर बहस की गुंजाइश नहीं हुआ करती। जोसेफ फौजियों के से अंदाज में इसे सैल्यूट करके अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। इसका मूड खराब हो गया था, इसलिए वो शराब की बोतल पर टूट पड़ा। आज सफदर 3 दिन बाद ऑफिस में दाखिल हुआ था, मगर इस हाल में कि इसके बाल गिर्द आलूर थे, लिबास मेला और शेव बड़ा हुआ था। दूसरों ने इसे हैरत से देखा और इसने एक बहुत बुरी खबर सुनाई, इमरान मार डाला गया। और ये खबर बम की तरह इन पर गिरी। जूलिया तो इस तरह उठी थी जिसे इसकी कुर्सी में अचानक बढ़ती रुदा रू दौड़ा दी गई हो। क्या बक रहे हो, इसने कांपते हुए सिसकी सी ली। वो सब सफदर के गेट इकट्ठे हो गए। इस वक्त यहाँ सिर्फ सेक्रेट सर्विस के आदमी थे। चूंकि छुट्टी का वक्त हो चुका था, इसलिए दौड़ धूप के काम करने वाले जा चुके थे। हाँ, ये हादसा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, सफदर भर्राई हुई आवाज में बोला। मैं 3 दिन से इसके साथ ही था। हम दोनों कैप्टन वाजिद दानी तंजीम के बकिया अफराद की फिक्र में थे। 3 दिन से एक आदमी पर नजर थी, आज इसका ताकुब करते हुए नदी की तरफ निकल गए। मकबरे के पास जो सरकंडों की झाड़ियां हैं, वहां हमें घेर लिया गया। हमला अचानक हुआ था। फिर ये बात मेरी समझ में आई कि हमें धोखे में रखा गया था। हम तो दरअसल ये समझते रहे थे कि इस तंजीम का एक आदमी हमारे नजरों में आ गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो हमें नहायत इत्मीनान से खत्म करना चाहते हैं, कि किसी ऐसी जगह घेरना चाहते थे जहाँ से बचकर हम निकल ही ना सके। यानी उन्होंने भी वो तरीका इख्तियार किया था जिसे वाजिद को पकड़ने के लिए इमरान काम में लाया था। फिर क्या हुआ, बातों में ना उलझाओ, जूलिया मुस्तरबाना अंदाज में चीखी। हम पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी और हम खुले में थे। अचानक मैंने इमरान की चीख सुनी, वो टेकरे से नदी में गिर रहा था। मैंने इसे गिरते और गर्क होते देखा था। तुम जानते ही हो कि नदी का वो किनारा कितना गहरा है जिस किनारे में मकबरा है। तुम कैसे बच गए, खावर ने सवाल किया। बस मौत नहीं आई थी, सफदर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तब तो फिर तुम ऑफिस ना हक आए, तुम्हें इधर का रुख ही ना करना चाहिए था। जाओ जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने कयाम गाह पर पहुंचने की कोशिश करो। जूलिया मेज से टिकी खड़ी थी, इसका सर चकरा रहा था। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती, कभी नहीं, वो कुछ देर बाद हाजियाने अंदाज में बोली। इमरान नहीं मर सकता, बकवास है, कभी नहीं, तुम झूठे हो, वो खामखवा हंस पड़ी। इसमें इसके इरादे को दखल नहीं था। वो सभी से अजीब नजर से देखने लगे, इनमें तनवीर भी था। मरने को तो हम सभी इसी वक्त मर सकते हैं, इसने कहा। हम सब मर सकते हैं, मगर इमरान नहीं मर सकता, अपनी बकवास बंद करो। फिर जूलिया ने कांपते हुए हाथ से एक्सो के नंबर डायल किए, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ना मिला। तुम्हें सर सूखे के यहाँ जाना था, खावर ने कहा। जहन्नुम में गया सर सूखे, जूलिया हलक फाड़ कर चीखी। क्या तुम सब पागल हो गए हो, गोया इमरान का मर जाना कोई बात ही नहीं है। इसकी मौत पर यकीन आ जाने के बाद ही हम शोक मना सकेंगे, खावर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। दफातन लेफ्टिनेंट चौहान ने सफदर से सवाल किया, तुम्हें वो आदमी मिला कहाँ था और तुम्हें यकीन कैसे आया था कि वो इसी तंजीम से ताल्लुक रखता है? इमरान ने मुझे ये नहीं बताया था, आखिर वो तुम्हें ही क्यों ऐसे मेहमान के लिए मुंतखब करता है? वो क्यों करने लगा मुझे एक्टो की तरफ से हिदायत मिली थी। वो सब से खामोश हो गए। जूलिया मेज पर सर टेके बैठी थी और तनवीर उससे नजरों से इसे देख रहा था। फिर वो उठी और अपना बैग संभालकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम कहाँ जा रही हो? तनवीर ने इसे टोका। शट अप, वो मुड़कर तेज लहजे में बोली। मैं एक्टो के अलावा और किसी को जवाबदार नहीं हूँ। वो बाहर निकलकर अपनी छोटी सी टोस्टर में बैठ गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसे कहाँ जाना है। सबदा को वो एक दयानतदार और संजीदा आदमी समझती थी। इस किस्म के झूठ की तोके इसकी जात से नहीं की जा सकती। इसने सोचा मुमकिन है इमरान ने इसे भी दाज दिया हो, लेकिन क्या जरूरी है कि वो हमेशा बचता ही रहे। कुछ देर बाद ट्विस्टर एक पब्लिक फोन बूथ के करीब रुकी और बूथ में आकर इमरान के नंबर डायल किए। वो दूसरी तरफ से सुलेमान ने जवाब दिया, लेकिन इसने इमरान के मुतालिक लाइल में जाहिर करते हुए बताया कि वो पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। जूलिया ने सिलसिले मुनकता करते हुए ठंडी सांस ली। कैसे मालूम हो कि सफदर का बयान कहाँ तक दुरुस्त? आखिर ये कम वक्त क्यों बच गया? फिर जरा ही सी देर में इसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे सफदर ही इमरान का कातिल हो। जिसने गैर इरादी तौर पर अपनी गाड़ी नदी की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। सूरज गुरूब होने वाला था, मगर वो दिन रहे वहाँ पहुँचना चाहती थी, इसलिए कार की रफ्तार खासी तेज थी। घाट की ढलान शुरू होते ही इसने बाएं जाने वाले एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। इसी तरफ से वो इस टेकरे की तरफ पहुँच सकती थी जहाँ एक कदीम मकबरा था और दूर तक सरकंडों का जंगल फैला हुआ था। कुछ कच्चे रास्ते के दोनों जानेब झंड बीड़ियों से ढके हुए ऊंचे ऊंचे टीले थे। मकबरे तक गाड़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता ना हमवार था। इसने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया और नीचे उतरकर खाली खाली आंखों से उफ में देखती रही जहां सूरज आसमान को छूती हुई दरख्तों की कतार के पीछे झुक चुका था। फिर वो चौंकी और मकबरे की तरफ चल पड़ी। अभी धुंधला का नहीं फैला था। दरिया की सतह पर ढलती हुई रोशनी के रंगीन लहरें मचल रहे थे। वो टेकरे के सिरे की जाने बढ़ती चली गई। मगर क्या ये हिमाकत ही नहीं थी, इसने सोचा, आखिर वो यहाँ क्यों आई है। टेकरे के नीचे पानी पर एक मोटर बोट नजर आई जिसमें कोई नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है कुछ लोग इसके छोटे से केबिन में रहे हों। अचानक मोटर बोट से एक फायर हुआ। पानी पर एक जगह बुलबुले उठे थे और गोली भी ठीक इसी जगह पड़ी थी। केबिन की खिड़की से राइफल की नाल पर अंदर चली गई और इसके बाद एक आदमी सर निकालकर पानी की सतह पर देखने लगा जहां एक बड़ी सी मुर्दा मछली उभर आई थी। फिर केबिन की दूसरी खिड़की से एक सिया रंग का बड़ा सा कुत्ता पानी में कूदा और तैरता हुआ मछली तक जा पहुंचा। इसके दम मुंह में दबाकर वो फिर मोटर बोट की तरफ मुड़ा था। दूसरी बार जब मोटर बोट में बैठे हुए आदमी ने अपने दोनों हाथ खिड़की से निकालकर मछली को संभाला, इस वक्त जूलिया ने इसे साफ पहचान लिया। वो सर सूखे था। इसने मछली अंदर खींची और कुत्ता भी खिड़की से कैबिन में चला गया तो वो मछलियों का शिकार खेल रहा था। जूलिया टेकरे से परे खिसक आई। इसने सोचा अच्छा ही हुआ सर सुखे की नजर इस पर नहीं पड़ी, वरना खामखवा थोड़ी देर तक रस्मी कसम की गुफ्तगू करनी पड़ती। मगर अब वो यहाँ क्यों ठहरे? आई ही क्यों थी? यहाँ क्या मिलता? अगर इमरान मारा भी गया तो ओह, वो यक बेग चौंक पड़ी। अगर वो यहाँ मारा गया होगा तो एक आध बार लाश सतह पर जरूर उभरी होगी, मगर इससे क्या, जरूरी नहीं है कि किसी ने इसे देखा भी हो। फिर वो क्या करे क्या करे? गैर इरादी तौर पर वो सरकंडों की झाड़ियों में घुस पड़ी। ये एक पतली सी पगडंडी थी जो सरकंडों की झाड़ियों से गुजरकर किसी नामालूम मकाम तक जाती थी। कुछ दूर पर इसे रिवॉल्वर के चंद खाली कारतूस पड़े मिले और सफदर के बयान की तस्दीक हो गई। वैसे तो वो तो इस पर यूं भी एतमाद करती थी, मगर सवाल ये था कि अब जूलिया क्या करे। ये बात तो खुद सफदर को भी नहीं मालूम थी कि इमरान ने इस आदमी को कहां से खोद निकाला था जिसके ताकुब में वो दोनों यहां आए थे और ये हादसा पेश आया था। ये नॉवेल जड़ों की तलाश का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाएं।